completion is 2023 or 24 is the completion time. Builder is a very strong builder. They are the builders. Inki first building jo thi, that was sold out. Aur uske tamam ke tamam penthouse balki builder ki apni family nahi liye the. The second building is almost 23 stories, 22 stories ye building hai. Ye bhi aap yun samjhiyega big gayi. And within days, and I thought ye double roti hai ke building hai. साहब इस हिसाब से ही बिक रही है. बहरहाल चंद एक स्पॉन्सर विल टेक यू टू द न्यूज़. शाजिया मलिक साहिबा स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर द न्यूज़.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे.
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000.
ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ, ਬਲਾਈਂਡਸ, ਵਰਟੀਕਲਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਹਨੀਕੈਂਪਸ, ਪਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ. ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com.
किचन या फिर बाथरूम दी रेनोवेशन ते इक्को ही नाम याद रखो, जीके ग्रेनाइट एंड मार्बल. कस्टम किचन कैबिनेट्स, बार्स, वैनिटीज या फिर कस्टम काउंटर टॉप्स, होवे वुडवर्क या फिर होवे ग्रेनाइट और मार्बल दे काउंटर टॉप्स. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार, यानी बेशुमार वैरायटी, बेहतरीन कस्टमर सर्विस, क्वालिटी वर्क और कीमत ते बहुत ही मुनासिब. 7171 टोरब्राम रोड, मिसिसागा. ताड़ा अपना कीरत. कॉल करो 647-534-3789 647-534-3789.
GK Granite Marble. आप कनाडा से पाकिस्तान पैसे भिजवाना चाहते हैं और वो भी फौरन जबरदस्त रेट्स के साथ और आराम से घर बैठे, आपको ये सब मिलेगा बगैर कॉम्प्रोमाइज के. अभी डाउनलोड कीजिए Zoom Money Transfer App from PayPal. That's XOOM Zoom. और अपने मोबाइल से पैसे भेजिए अमेजिंग एक्सचेंज रेट्स के साथ. बैंक डिपॉजिट्स, कैश पिकअप या मोबाइल रिचार्ज. अब पाकिस्तान पैसे भेजें उंगली के इशारे से. Zoom, a PayPal service. तेज, आसान और महफूज मनी ट्रांसफर.
السلام علیکم, میں شباہت علی فرام میگا منی ایکسچینج. ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ, مسیساگا.
Hear Max लेकर आए हैं Ultimate Hearing Solution with World's Smallest Advanced and Digital Hearing Aids. वो भी सबसे कम कीमत में. किसी भी Hearing Aid की खरीदारी पर बिना किसी फिकर के 3 साल की वारंटी भी हासिल कीजिए. Free No Obligation Hearing Test के लिए आज ही कॉल कीजिए Hear Max. सर्व करते हैं GTA में 2 लोकेशन से,
जेन एग्लिंटन या फिर दंदास एरनडेल के इंटरसेक्शन पर. 416-792-8792 हियर मैक्स 416-792-8792.
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट. दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे. बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा. डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट 9054578661.
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक. ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा.
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%. मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं. पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन. अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577.
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का, दावत हो तो केटरिंग बहुत खूब करते हैं, और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटीड नो हार्ट बर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसेस सागा में, बस कॉल कर लीजिए 9054058383 किराना हट। जी साहब, दुनिया में कोई चीज भी बेफायदा नहीं है, मक्खी मच्छर चूहा बिल्ली हर चीज का कोई ना कोई फायदा जरूर है, और बतखों का भी फायदा है। मेरा ख्याल है बतखें सिर्फ खूबसूरती के लिए होती हैं, मगर साहब बतखों का भी फायदा है। चाइना 1,00,000 बतखें दे रहा है पाकिस्तान को।
जी अभी 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 नहीं लेना चाहिए जी, अभी नहीं लेना चाहिए आफ्टर कोरोना।
आप जो
आई डोंट थिंक वी शुड एक्सेप्ट,
भाई बतखों में कोरोना आ गया,
सारे जानवरों में वहां पर फैला हुआ है।
बतखे आ रही है टिड्डी दिल को मुकाने के लिए, बतखे टिड्डियां खाती हैं।
वो है ना, वो ट्रेन,
मैंने भी ना बतखे पाली थी पिछले साल, 4 बतखे मैंने पाली थी, वो सारा दिन मक्खियां ही खाती रहती थी। मैंने कहा कितना गंदा जानवर है,
बहुत खूबसूरत मक्खियां थी वो
मक्खियां नहीं। शाजिया जी विद द न्यूज।
हाँ जी, वो जो ये मक्खियां मच्छर खाने वाले हैं ना, ये कोरोना वायरस उन्हीं की वजह से फैला है, जो आप कह रहे हैं बड़े फायदे हैं इनके।
नो फायदे आपको मैं एक बात बताती हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, एवरीवन आउट ऑफ द 2 विल बी डायग्नोस्ड विद द कैंसर, व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम
चीजें जो हम खाते हैं,
मुझे आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 12, अशफाक अहमद हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में आए थे, एंड ये बात है 1978-79 की बात है, 78-79 की बात है, और मुझे याद है कि हम लोग सारी लड़कियां बैठी हुई और अशफाक अहमद, तो उनके एक लफ्ज थे जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा अभी तो आप जब सेब खाते हैं ना, तो सेब में से निकलती है सुंडी, और जितनी हम केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, देयर विल बी अ टाइम के जो सेब में से सूंडी निकलती है वो आपको खाया करेगी। और वाकई आपको मैं बताती हूँ कि ये जो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का इस्तेमाल है, देयर इज कॉज ऑफ मेनी अदर सिकनेसेस।
जी जी जी,
देयर आर मेनी सिकनेसेस
तो बहुत ही,
जो मुझे और आपको अंदाजा भी नहीं है। और आपको मालूम होगा कि कनाडा में मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त हर जगह पे मिलता है, यहाँ पर अब जो ऑर्गेनिक फूड का एक कारोबार के तौर पर है, बल्कि यहाँ के मेन स्ट्रीम के चैनल ने इसको कवर भी किया था कि ऑर्गेनिक फूड इज मोर बिजनेस देन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो शुरू हुई है कि अगर आपने देसी मुर्गी खानी है, ये मुर्गियाँ छोटे साइज़ की हैं, बहुत बड़े साइज़ की नहीं, रनिंग एग्स भी आप लोगों ने इस्तेमाल किए। कनाडा में टोरंटो में अब वो रनिंग हैन का गोश्त भी आपको मिलता है, वो एक पैकेट जो आम मुर्गी का गोश्त है उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा महंगा होता है। ये मुर्गी का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, इसमें हड्डी से गोश्त कम होता है, और इट्स बीन सोल्ड। और जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं इसमें जितने केमिकल्स हैं वो यकीनन मेरी और आपकी जिंदगी पे बहुत असरअंदाज हो रहे हैं।
जी बिल्कुल ठीक है, कैंसर इसीलिए बहुत तेजी से बढ़
रहा है। कोरोना वायरस की आप बात करते हैं, मैं जिंदगी का जो एक मौत का वक्त है, मौत का वक्त मुकर्रर है, मगर कोरोना वायरस में यकीनन आपको पता है खुनाक डिप्थीरिया भी एक बीमारी हुआ करती थी, उसमें भी ये सांस की नाली जो थी वो सूज जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना महाल हो जाता है, लोगों की मौत हो जाती है। मैं अमेरिका की एक स्टैटिस्टिक्स देख रही थी, और शाजिया जी आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि पूरी दुनिया में कितने बेशुमार लोग हैं जो फ्लू से मर जाते हैं, और कनाडा में बाकायदा फ्लू की जो वैक्सीनेशन दी गई है, और बड़ी उम्र के लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है बच्चों के बीच में यह ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। मैं मानती हूँ कोरोना वायरस जो है इस वक्त एक मसला बना हुआ है, मगर फ्लू ने कोरोना वायरस की निस्बत ज़्यादा अमवात का बायस बना था, जहाँ तक रहा कि हम इंसान आर द मेन कंट्रीब्यूटर टुवर्ड मेनी अदर सिकनेस। अस्पतालों में जाके देख लें कितनी बीमारियाँ भरी पड़ी हैं। मैं और आप जो खाना खाते हैं, हम बच्चा पैदा बाद में होता है उसकी आर्टरीज ब्लॉक पहले होनी शुरू हो जाती हैं। कब आपने सुना था लास्ट टाइम में कि 23 साल का बच्चा उसकी आयोटा जो है वो बर्स्ट हो गई, यानी डाइड। That is the
hockey का player, आरफा जी, hockey का player है, and they are very fit.
आप सोचिए उनकी एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं है,
बेंच पे बैठा हुआ था उसको हार्ट उसका हार्ट स्टॉप हो गया।
कहने की बात यह है कि मेरा आपकी जो फूड है ना, दैट इज अ कंट्रीब्यूटर। मेरी आपकी लाइफ में जो हमारी स्ट्रेस है, ये जो डायबिटीज इतनी कॉमन होती जा रही है, साइलेंट हार्ट अटैक्स होते चले जा रहे हैं, द स्ट्रेस इज द मेन कंट्रीब्यूटर, जिसमें मेरा आपका लाइफस्टाइल कि सड़कों के ऊपर, आज ही हम 410 के ऊपर आए तो सड़क ब्लॉक थी और मैं माजिद भाई को ठंडा कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सफर कर रहे हैं। आप सोचिए जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी गाड़ी टूट गई, हो सकता है उसको चोटें आ गई हों, हो सकता है वो अगले चार दिन नौकरी पे ना जा सकता हो। यानी वी डोंट काउंट आवर ब्लेसिंग्स, वी काउंट आवर शॉर्टफॉल्स। जी शाज़ी
जी, अच्छा जी, हमारी वही जो डेवलपिंग स्टोरी है उसी से हम शुरू करेंगे। वो जो जो मोहक चीफ्स जो थे, वो जो ब्लॉक किए हुए थे उन्होंने सारे, वो बीसी और क्वेबेक के एरिया।
अब आप उनको गलत कहती हैं, मैं उनके साथ भी चल रही हूँ।
हाँ जी, तो वो बस उनकी अब आज टॉक्स पहले तो कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अब हो रही है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने कहा कि वी आर वेरी सॉरी कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था। तो वो चीफ्स कह रहे हैं कि अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या मिसकम्युनिकेशन था, क्योंकि आपने तो लोग भी अरेस्ट किए और उनको जबरदस्ती हटाया भी। तो आज उनके कुछ टॉक्स होंगे तो फिर देखते हैं उसमें क्या वो होता है। लेकिन अरफा भाई, असल में क्या होता है कि जब डेवलपमेंट के बीच में ये चीजें आ जाती हैं ना, ठीक है उनके भी डोंट रियली पुश देम टू द वॉल, उनके लिए भी कोई हल
एंड दे आर पुश्ड टू द वॉल।
हां जी, लेकिन वही मैंने, हमने पहले भी कुछ दिन पहले बात की थी कि कोई अल्टरनेटिव रूट निकाल लें, कुछ कर लें। तो आज वो टॉक्स होंगी आज बैठ के, तो होपफुली जो है उसके अंदर कुछ शायद चीजें,
हम या तो बहुत लीनियंट हो जाते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इस वक्त अगर आप फर्स्ट ये जो नेशन की जो वुमेन है, आप उनके राइट्स की बात करते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बी टॉक ऑफ द टाउन, आप फर्स्ट वुमेन की राइट्स की बात करना शुरू कर दें। आप एक कौम को इतना दीवार के साथ मत लगाएं। अगर मैं और आप बीइंग एन इमिग्रेंट, वी हैव ह्यूमन राइट्स के लिहाज से हमारे राइट्स हैं, तो जिन मुल्क, जिन लोगों के साथ ये मुल्क बिलोंग करता है, उनके कितने कितने राइट्स हो सकते
हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है,
दे मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोरोना वायरस जो है वही है कि ऑन्टेरियो के अंदर एक सिक्स्थ केस हो गया। वो जो कल हम बता रहे थे कि वो जो लेडी है 60 ईयर्स की, उनके जो हस्बैंड है उनको ये हुआ है, और ये इतना स्केयर बढ़ गया कि TSX जो आप मुझे बता रहे थे वो आज उसकी वजह से, वो कह रहे
TSX जो है आज, वो उन्होंने, दैट इज नॉट वन ऑफ द
नहीं, उन्होंने कहा कोरोना वायर का स्केयर इतना बढ़ गया है
कि टेक्निकल
डिफिकल्टीज तो उन्होंने कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि साथ ही कुछ कोरोना वायरस का
स्केयर इतना है। TSX जो है इट वाज डाउन 324 पॉइंट्स
जी,
एंड फॉर लास्ट सो मेनी डेज बीन ट्रिपल डिजिट पे लूज कर रहा है वो, तो आज 324 पे डाउन था वो, उस वक्त उन्होंने ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी,
बंद कर दिया उसको,
बोथ द वेंचर्स आर स्टॉप्ड।
सोचिए वो लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा 324 पॉइंट्स के ऊपर, यानी कितने लोग हैं जो मिलियनर से जीरो पे आए होंगे।
काफी लोगों को नुकसान होता है,
मेनी पीपल लॉस्ट।
जी बिल्कुल, यही होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी अर्निंग्स जिन्होंने डाली होती है ना, जिन्होंने किया होता है, वो अगर ऊपर जाते हैं तो बहुत ही मिलियंस बना लेते हैं, नीचे आते हैं तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो ये तो है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आपने किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। यस एब्सोल्युटली। अच्छा, ये क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमने भी कल भी बताया था कि हम लाएंगे कुछ अपील पुलिस से किसी को बात करने के लिए। तो एक आदमी जो है ने आज गिल्टी प्लीट कर लिया टोरंटो पुलिस के सामने, उससे टोरंटो पुलिस ने बहुत एक लार्ज गन का कैशे उससे पकड़ा था एक दफा। तो उसने कन्फेस किया कि हाँ, ये मैं अमेरिका से, मैं फ्लोरिडा से लेकर आया था। तो टुडे जो है वो, यानी केस जो है वो सॉल्व हो गया। ये बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न था क्योंकि वो जो गन वायलेंस बढ़ती जा रही थी, तो पुलिस कॉन्स्टेंटली रेड्स कर रही थी। तो आज वो जो एक आदमी पकड़ा
का बड़ा कंसर्न था कि कनाडा के बॉर्डर से, और देयर वाज अ टाइम कि उन्होंने कहा था कनाडा के साथ भी पाबंदी होनी चाहिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से यहां आ जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। अब कनाडा में जितना गन वायलेंस है, जितनी गन है, कहां से आ रही है? अमेरिका से आ रही है।
अरफा जी, लोगों को शायद पता ना हो कि मैंने टोबा का जो हमारा इलाका है, वहां से जो बॉर्डर लगता है अमेरिका का, वहां से तो लोग ऐसे जाते हैं कि एक
खुला है,
दूसरा घर चले गए वहां पर, और ज्यादा बहुत सारी स्मगलिंग भी वहीं से होती है।
जी। अच्छा, ये आपको पता होगा कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले एक फॉल्स अलार्म आया था और उसमें फिर कहा गया था कि ये जो हमारे जो न्यूक्लियर वो है वहाँ पे पिकरिंग में जी, तो वो अलार्म बज गया था
सुबह में।
हाँ, सुबह में, तो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे ओंटेरियो में। तो ये इसकी पूरी प्रोब की गई थी कि इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ उसमें ह्यूमन एरर भी है लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके बायस है। तो जो कहने का मकसद उनका ये था अथॉरिटीज का कि आपको कोई इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूक्लियर लीकेज है या कि कोई वो जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स हैं वो उनके कोई
इट्स वेरी सेफ प्लांट, इट्स वेरी सेफ प्लांट, टनों पानी मौजूद है इसकी सेफ्टी।
तो ये बिल्कुल फॉल्स अलार्म था, उन्होंने कहा कि इसमें कोई कंसर्न शो करने की जरूरत,
मगर वहां पे कंसर्न था। कंसर्न क्या था कि ये जब फॉल्स अलार्म हुआ तो इसके लिए फौरी तौर पर एक दवाई खाई जाती है ताकि वो रेडिएशन हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना करे। वहां कंसर्न ये आया था कि अगर लोगों ने वो फौरी तौर पे दवाई खा ली तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे।
हाँ जी, तो वो वहां पे उन्होंने यही कहा कि वहां पे जो चीजें हैं वो तो हम लोगों ने कंट्रोल कर ली थी लेकिन वो जो लोग होते हैं दे आर स्पेसिफिकली ट्रेन्ड फॉर दीज थिंग्स सो दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। लेकिन चूंकि बहुत सुबह का टाइम था, 4:30-5 बजे का वक्त था और ये अलार्म बजने शुरू हो गए थे और सारे ऑन्टेरियंस उठ के बैठ गए हुए थे, तो इसलिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इसमें कोई इतना ज्यादा अलार्म होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई
रेडिएशन
इट इज अ ह्यूमन एरर एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो थे उसके बायस हुआ था। सो थिंग्स आर इन प्लेस नाउ, सो नथिंग टू वरी अबाउट। हां जी, क्योंकि वो आपको पता है ना हमारे मुल्कों की तरह डिले नहीं होते, यहां पे जरा फटाफट एकदम इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, ऑन्टेरियो में जो है बहुत अरसे से ये कंसर्न था कि ये जुडिशियल प्रोसेस जो है ये कैसे चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग यहां पे रहते हैं, तो वो एक ही गोरा होता था जो कि वो सारे उनको करता था केसेस को, जैसे साउथ एशियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, हर किसी के डिफरेंट कंसर्न्स हैं, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं उनकी, तो उसके लिए एक कुछ प्रपोज चेंजेस लाई जा रही हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में और ये एक बहुत ही बड़ा मसला था और बहुत अरसे से चल रहा था। तो उस सिलसिले में कल बल्कि हमारी जो है जो 770 पे हम कल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहे हैं अटॉर्नी जनरल का, डग डाउनी का, और उसमें हम ये पूछेंगे कि ये जो आप नया ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट का सिस्टम ला रहे हैं यहाँ पे
एथनिक बैकग्राउंड्स पे डिपेंड
करते हैं, तो आप इसके लिए ये प्रोसेस कैसे चलेगा और कैसी अपॉइंटमेंट सब होंगी, तो इसकी सारी कल स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे।
तो कल का प्रोग्राम खास तौर पे देखिएगा, कनाडा के जो कानून के मुताबिक और जो ये फैसले होते हैं उसमें आपकी सेफ्टी के लिए, आपके भले के लिए ये तब्दीली लाई जा रही है, कल का प्रोग्राम खास तौर पे जरूर सुनिए
जी। अच्छा, ब्रैम्पटन का जो कैनेडियन टायर गार्डन सेंटर जो है उसमें आज सुबह काफी लोगों ने देखा जो उस एरिया में रहते थे, ये एरिया है मैकलॉगलिन और बोवेट का, तो वहां पे काफी धुआं वुआ देखने को मिला था, तो वो पता चला है कि जो कैनेडियन टायर का जो था आउटलेट थी उसके अंदर कुछ आग लग गई थी, गार्डन सेंटर में आग लग गई थी, लेकिन उन्होंने कहा है पुलिस ने कि एवरीथिंग इज यू नो
अंडर कंट्रोल
क्योंकि कोई इंजरीज रिपोर्ट नहीं की गई है वहां पे, क्योंकि टाइम ही ऐसा था सुबह का, तो कोई जाहिर है एम्प्लॉइज तो होंगे नहीं उस आउटलेट के अंदर, तो इसलिए वो है। अच्छा जी, आपने बताई दिया कि सऊदी अरेबिया ने कुछ बैन लगाए हैं कोरोना वायरस के सिलसिले में, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि चाइना और साउथ कोरिया के अंदर तो है ही है, साउथ कोरिया में तो अब बल्कि बहुत तेजी से फैल रहा है, ये बताया गया कि 938 केसेस वहां पे हो गए, लेकिन जापान ने भी इतना स्केयर हो गया वहां पे कि उन्होंने आज सारे स्कूल्स वहां पे बंद रखे हुए थे, उन्होंने कहा कि स्कूल्स हम नहीं खोल सकते हैं क्योंकि जब
हालांकि कोरोना वायरस के इंक्यूबेशन टाइम अब उन्होंने फील किया दैट इज 24 डेज
जी, 14 से 24 डेज के बीच
14 में से लेके 24 दिनों तक के किसी इंसान की रेजिस्टेंस क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 24 दिनों के दौरान है, एक दिन दो दिन 10 दिन स्कूल बंद करने से तो मामला हाँ, नहीं चलेगा
जी जी। और आपने बता ही दिया कि 38 कंट्रीज में वो फैल चुका है, तो एनीवेज ये अब देखेंगे कैसे आगे चलेगा। पाकिस्तान में भी कुछ दो केसेस आए हैं, तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि डरने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम वी आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। मलेशिया का कुछ दिन हमने पहले बताया था कि महातीर मोहम्मद साहब ने रिजाइन कर दिया था, तो आज जो मलेशिया के किंग हैं वो उन्होंने आज बहुत सख्त इस चीज का नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू लीव द गवर्नमेंट इन लिम्बो एंड लीव जस्ट लाइक दैट व्हाइल द टसल बिटवीन यू एंड अनवर इज गोइंग ऑन, तो ये क्या चल रहा है आपके बीच में। तो उन्होंने आज एक मीटिंग भी की है और फिर से महातीर मोहम्मद को बुलाया भी है, उन्होंने कहा कि आप बताएं, तो लोगों का वहां पर कहना है कि महातीर इतने पॉपुलर हैं कि उन्होंने रिजाइन कर भी दिया है फिर भी वो थर्ड टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर बन के वापस आ सकते हैं।
शाजिया जी, मैं ये कहती हूं तीसरी दुनिया के ममालिक के बारे में तो आप बात करते हैं, मगर साहब कुर्सी इतनी बुरी चीज है, महातीर मोहम्मद की एज को आप देखिएगा, मगर
बस पावर का नशा है ना जी,
पावर का नशा है
जी। अच्छा, इंडिया के अंदर आपने अभी तो इंटरनेशनल जो हेडलाइंस हैं वो बताई ही हैं, वहां पे अब 32 लोगों की डेथ हो गई है। तो कल भी जब मैं सारा इंडियन मीडिया की ये रिपोर्ट्स देख रही थी तो मुझे नेहरू साहब की किताब याद आ गई, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो मुझे याद आ गई। उसमें उन्होंने, नेहरू साहब ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि हमारा बड़ा ही सेक्युलर कंट्री है और पठान जो है वो बड़ा गोरा चिट्टा एक हिस्से में इंडिया के रह रहा है और केरला का एक वो आदमी है एक हिस्से में रह रहा है। ये शक्ल में, देखने सुनने में, फेथ में बहुत डिफरेंस है, बट ऑल ऑफ देम आर इंडियंस। तो ये मैं सोच रही थी कि जो अब जो डिविसिव पॉलिसी वहां पे चल रही है और जो कपिल मिश्रा साहब ने कहा कि अभी तो जनाब ट्रंप साहब आए हुए, बीजेपी के जो लॉ मेकर हैं तो आए हुए हैं, वो अब चले जाएं तो फिर हम इनसे पूछेंगे क्या होगा, क्या हम करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में इंटरनेशनल मीडिया तो इसको कवर कर ही रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत एक अदारा है अमरीका के अंदर, प्यू रिसर्च सेंटर, बिल्कुल नॉन पार्टिजन है वो, उनका किसी से कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अभी एक बड़ा जबरदस्त इंडेक्स निकाला है ऑन रिलीजियस फेथ, फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट। तो उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे तकरीबन 50 कंट्रीज जो है उसमें किया है और उसमें उन्होंने इंडिया को 10 में से 8.7 नंबर्स दिए हैं। सो इट इज रियली डाउन द लाइन, यानी कि वो सिर्फ ऊपर किससे हैं, सूडान से, नाइजीरिया से, सीरिया से और अफगानिस्तान से। तो आप सोचें कि एक मुल्क जिसके के अंदर इतनी डेमोक्रेसी होती थी और बोलने का वो था, तो उसमें बहुत सारे जो अब स्टार्स हैं वो भी उसके बारे में बोल रहे हैं। बल्कि आपको मैं बताती हूँ, पिंक फ्लॉयड, आपको पता है बहुत बड़ा रॉक ग्रुप है इंग्लैंड का, तो आज उसने भी वो जो वहाँ पे जो लड़का है आमिर, वो जो पोएट एक्टिविस्ट है इंडिया का, उसकी वो नज़म जो है कि तुम मारोगे तो हम उसके बारे में इंसाफ लिखेंगे, और वो जो उसके बैकग्राउंड में उसने कहा है कि I consider me involved in this fight against Modi's fascist government. तो आप सोचें कि कहां कहां ये चीज पहुंच रही है। और एक और स्टार हैं मिस्टर कुसैक, आपको उनको पता होगा, बड़े फेमस स्टार, वो उन्होंने भी कहा है कि ये जो कुछ इंडिया में हो रहा है क्यों नहीं। इस सिलसिले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात की है बर्नी सैंडर्स ने की है। बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि ये कंप्लीट फेलियर ऑफ लीडरशिप है उस मुल्क में, और उन्होंने आज ट्रंप साहब को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये कैसा लूक वार्म सा उनका जो है वो रिएक्शन था, वो वहां पे गए हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता तो चला है कि दिल्ली में कुछ चल रहा है, बट आई लीव इट टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो वो कहने लगे ये किस तरह का रिएक्शन है जब एंटी मुस्लिम राइट्स वहां पे चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी इट इज अप टू इंडिया टू यू नो रिजॉल्व दिस। आप देखें कि कितनी इनटॉलरेंस है। बल्कि वैंकूवर के अंदर ये ग्लोबल न्यूज की एक स्टोरी मैं देख रही थी, ग्लोबल न्यूज के ऊपर जो हमारे यहां पे है उन्होंने कवर की। वैंकूवर के अंदर एक जर्नलिस्ट है गुरप्रीत सिंह, उनका एक लेक्चर था बीसी में की यूनिवर्सिटी में, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। तो वो ये सीए का जो बिल इनका आया है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके ऊपर वो कह रहे थे। तो उनका कहना है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूज के जिस वक्त उन्होंने अपना लेक्चर खत्म किया तो उनके पास कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा हम तुम ये जो बातें कर रहे हो ना हम तुम्हें इसका बताएंगे कि अब क्या तुम्हारा होता है,
तुम्हारा सलूक
क्या सलूक किया जाएगा। तो वो कहने लगे कि भाई ये तो बड़ा मुझे थ्रेट किया जा रहा है। तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर आरसीएमपी ने आके इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा है कि भाई हम अब देखेंगे कि ये थ्रेट इसको लिया जाए या इसको वैसे ही कोई। तो आप सोचें कि जरा ये चीज कहां कहां पे जो है वो
इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में, अमेरिका के मुख्तलिफ अखबार आज इसको कवर कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन दी जाती है।
और आप देखें कि जो जज हैं मुरलीधरन जो हैं उनको आज चेंज कर दिया गया है सिर्फ इस चीज के लिए कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो राइट्स आप दिल्ली में कर रहे हैं, और बड़ा उसको आज उधर कांग्रेस ने उसको कंडेम किया है, उन्होंने कहा कि दिस इज शेमफुल। तो वो जो है बीजेपी के जो लॉ मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो रूटीन की चेंज है, ये तो होती रहती है।
शाजी जी, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करते हुए ये बात कहना चाहती हूँ कि जो मुसलमान, जिसमें मैं ज़ाती तौर पे कई लोगों को जानती भी हूँ, आप जावेद अख्तर की बात कर लें, आप इंडिया के बेशुमार मुस्लिम एक्टर्स की बात कर लें, आप कैनेडा में रहने वाले बेशुमार मुसलमान जो इंडिया से हैं, जनाब बाजी जमाल साहब की बीवी इंडिया से हैं, जो लोग मुसलमान इंडिया से हैं वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो उनका मुल्क है और उनका मुल्क से मोहब्बत करना बनता है, मगर दीज आर द पॉलिटिशियंस हु आर डिवाइडिंग एंड रूलिंग. और ये पॉलिटिशियंस अपने मफाद के लिए न सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका में अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं. आप इमेजिन कीजिए कि आरएसएस के कितने रजिस्टर्ड कारकुन हैं अमेरिका में, और आरएसएस कैसे रोल प्ले कर रही है इवन इन कैनेडा. बट दोज मुस्लिम्स हु बिलोंग टू इंडिया, दे डेफिनेटली लव इंडिया, इट्स देयर नेशन. और वहीदा यहाँ हमारे स्टूडियो में बैठ के इंडिया का कौमी तराना गाया करती होती थी. दे लव इट्स देयर कंट्री, मगर दीज आर द पॉलिटिशियंस हु आर यूजिंग देयर पावर टू डिवाइड पीपल एंड मेक इंडिया एज वन रिलीजन प्लेस. दीज आर द पॉलिटिशियंस.
लेकिन ये भी तो आप देखिए ना, कि अब जैसे वो मिश्रा साहब ने कह दिया कि जी ट्रंप साहब आए हुए हैं, ये जाने दें, हम करेंगे. दूसरा उनका जो मिनिस्टर है बीजेपी का, वो कह रहा है मैं तो बोलूंगा कि जो है देश के गद्दारों को तो आपने आगे से बोलना है, तो वो कहते हैं गोली मारो सालों को. फिर आज जो है, आज की ये खबर है, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उनका उनका आज का जो बयान था, वो कह रहे हैं जी सावरकर साहब तो जो हैं उनसे तो हम बड़े इंस्पायर्ड हैं, उन्होंने मिलियंस को. आपको पता है सावरकर साहब कौन है? सावरकर साहब वो साहब हैं जिनको के गांधी जी को मारने की कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा गया था 1948 में, और उनको फिर उनके ऊपर ट्रायल चली थी, और जाहिर है सबूत नहीं मिलते हैं बड़े
लोगों के, उनकी बात कर रहे हैं,
उनको छोड़ दिया गया. तो उनसे इंस्पायर्ड हैं ये लोग, उनसे इंस्पायर्ड है.
आप उनकी बात कर रहे हैं मिस्टर गोड से जिन्होंने उनको मारा था, आज वो भी हीरो बने हुए
हैं. हाँ जी, तो इनके बारे में उन्होंने, जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि ये मिलियंस को इंस्पायर करते हैं, तो इनको वो जगह नहीं दी गई जो ये डिजर्व करते थे. तब आप देखें ना, अब आप अगर इस तरह की नियो नाट्जी पॉलिसीज से अगर आप इंस्पायर्ड हैं, तो आपके बारे में क्या कहा जा सकता है. अच्छा जी, इमरान खान साहब जो है वो दोहा में है आज, और जाहिर है कि
दोहा में कॉन्फ्रेंस थी तालिबान के साथ, और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, मगर पाकिस्तान को मुकम्मल स्क्रिप्ट दिया नहीं गया.
लेकिन उनकी जो आज मुलाकात थी उनके साथ, कतारी अमीर के साथ जो हैं, उनके साथ जो बातें हुई हैं वो यही हुई है कि जो इमरान खान साहब ने उनसे कहा है कि भाई उसमें अफगानिस्तान में थोड़ा पीस आना चाहिए, ताकि फिर रीजन के रीजनल पीस के लिए वो जो है बेटर है. और आप देखें वैसे जो है अमरीका बड़े आजकल पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये जो पूरी वॉर तुम्हारी लड़ी है वो पाकिस्तान ने, तुम उन टॉक्स में पाकिस्तान को भी बिठाओ. ये इन्विटेशन कतर ने दिया पाकिस्तान को कि तुम लोग आओ.
अमेरिका ने दिया नहीं, मगर अमेरिका को इस बात का मालूम है, और यकीनन अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मफाद में है, हिंदुस्तान में अमन पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान में अमन हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के, यानी इस रीजन के मफाद में है.
जी बिल्कुल. तो हम खट्टी मीठी वही खबरें देते हैं ना, तो अब सख्त दे दी है, तो अब जरा थोड़ी सी तो पीएसएल की बात कर लेते हैं. आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला था, तो वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने जीत लिया, और बेन कटिंग्स ने क्या, बिल्कुल लग रहा था कि इस्लामाबाद जो है वो जीत जाएगा, लेकिन आखिर में जो उसने छक्के मारे हैं उस लड़के ने, भाई कमाल कर दिया और जिता दिया अपना क्वेटा की टीम को. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो इस तरह से अब जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स हैं वो टॉप ऑफ द टेबल पे चले गए हैं. तो अच्छा, और दूसरी खबर ये है जी, जॉनी डेप, आपको पता है हम सब बड़े शौक से देखते हैं उनकी फिल्में, स्पेशली जो है वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन हमने देखी है. तो वो उनकी वाइफ ने एक केस किया था उनके ऊपर कि जी ये मेरा बड़े अब्यूसिव हैं जॉनी डेप. तो एक टैबलॉयड ने, ब्रिटिश टैबलॉयड ने उसको बड़ी जी कवरेज दी थी. तो जॉनी डेप साहब ने कहा कि मैं इस टैबलॉयड के खिलाफ जो है मैं एक्शन नहीं लगा,
घर पर
ये झूठ है बिल्कुल, मैंने कोई तशद्दुद अपनी बीवी पे नहीं किया है. तो आज वो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें उनकी थी, तो वो उनका जो गेटअप है वो पहचाना नहीं जाता, क्योंकि हम तो उनको पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से जो है वो जानते हैं. तो बस ये थी जनाब
आज की सारी कहने की बात. ये है कि जब इन तमाम न्यूज के बाद जो मेरे दिमाग में बात आती है वो ये आती है कि कहा जाता है, और वही बात है कि मीडिया जो पोर्ट्रे करता है कि पता नहीं शायद मुसलमान औरत पे जुल्म होता है. अब आप देखिए जब बातें खुल के आ रही हैं, तो वो जो यूरोप से ताल्लुक रखते हैं, वो जो नॉर्थ अमेरिका से आदमी ताल्लुक रखते हैं, वो औरत को कितना अब्यूज़ कर रहे हैं. वो लोग जो मेरे से मुत्तफिक नहीं होंगे वो ये कहेंगे ओ जी पाकिस्तान च खबर दब जाती है, इतों खबर आज तक तो दबी रही. पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, ये वो ममालिक हैं जहाँ औरत को प्राइम मिनिस्टर तक बनाया गया. हमारे यहाँ फिर भी औरत को इज्जत और मुकाम दिया जाता है. नॉर्थ अमेरिका में तो आज तक औरत को प्राइम मिनिस्टर भी ना बनाया गया, प्रेसिडेंट भी ना बनाया गया.
जी बिल्कुल, और ये एक स्टडी आई थी कुछ अर्सा पहले के जो इंग्लैंड जैसे है, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जो क्राइम्स होते हैं दे वो जो रिपोर्ट किए गए थे वो बैटर्ड विमेन के थे, कि या तो उनके उनके बॉयफ्रेंड्स उनको मारते पीटते हैं और अब्यूज करते हैं या उनके हस्बैंड्स उनको करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वहां पे इस तरह के क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे मुल्कों में तो अब औरतें जो है कहती हैं मैंने सुना है बात नहीं करने देती इतनी वो हो गई है।
आज हमारी मुलाकात एक सिर्फ पाकिस्तान की मत बात करें, क्योंकि एक इटालियन से जो आरफा जी कह रही थी कि बड़ा पेशेंट वाला बंदा है और उसकी बीवी भी वहाँ काम करती है, तो उससे आरफा जी ने पूछा तुम तो वो तो बहुत खुश होगी तुमसे, उसने सिर्फ एक नज़र दिखाई कि आज तक तो कभी कोई औरत अपने आदमी से खुश नहीं रही है।
You always, you are a fault
finder.
Isn't
that true?
No. You are the man जिसने पेट्रोल डाला था, वो बंदा तो बहुत खूबसूरत था।
मतलब
आप जैसा एक बंदा नरेंद्र मोदी हो जाए तो वो दुनिया को आग लगा सकता। बहुत शुक्रिया शहजादाज़ाद, I love you from Pakistan, Lahore. आरफा जी how are you? I love you and I miss you. और यकीनन पाकिस्तान में रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त हुआ जाता है, हम आपको पाकिस्तान लेके चलेंगे जहाँ से जनाब खबर नहीं हाशमी हमारे साथ शामिल होंगे। शुक्रिया शाजिया।
थैंक यू जी।
और टोरंटो की और इर्द गिर्द की मिली जुली खबरें लेकर के चलेंगे हम अब पाकिस्तान की खबरों की तरफ, मगर मीनवाइल हमारे चंद एक स्पॉन्सर्स का पैगाम। विप से डेंटल कवरेज नहीं मगर साहब आप परेशान मत होइएगा, डॉक्टर फयाज कुरैशी अब दो क्लिनिक से आपको सर्विस देते हैं, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, तमाम डेंटल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, रूट कैनाल, ऑर्थोडॉन्टिक्स ट्रीटमेंट है, ब्रेसेस है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, तो बस सिर्फ एक ही नाम डॉक्टर फयाज कुरैशी, मिसेस सागर और स्कारब्रो। आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट बनाइए, खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम और फीमेल डेंटिस्ट 9052325678 2325678 डॉक्टर फयाज कुरैशी।
पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो सिर्फ और सिर्फ भेजें एबल एक्सप्रेस इंटरनेशनल के थ्रू, क्योंकि इनके पास है रिलायबल सेफ और सिक्योर बैंकिंग चैनल्स, चाहे तो दूसरी फॉरेन करेंसी सेल और परचेस भी करें। फॉर फास्ट एंड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर थ्रू एबल एक्सप्रेस इंटरनेशनल कॉल एट 416-230-4444 416-230-4444।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 4168945872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 4168945872 8945872।
और हर मंडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577।
जी सर इकराम, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज। 4:32 और 31 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और साहब सबसे पहले तो माजरा जनाब, वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान खावर नईम हाशमी साहब, उनको हमने काफ़ी वेट करवाया और रात के कई 2:30 बज रहे मेरे ख्याल वहाँ पर, मगर आपका प्यार है कि खावर नईम हाशमी साहब हमें इतना टाइम दे देते हैं यहाँ पर, इतनी रात गए भी, और जब कावर नईम हाशमी नहीं होते तो फिर आप लोगों के कॉल बड़े आते हैं भाई कावर नईम हाशमी साहब नहीं आए, तो लीजिए साहब ड्रम रोल के साथ हम वेलकम करते हैं साजो आवाज़ की इस महफिल में कावर नईम हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए क्या खबरें हैं पाकिस्तान की?
पाकिस्तान से आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है जी।
जी
IMF ने जो आपको कर्जा देना है उसकी एक और किस्त जो है जारी करने की आज सिफारिश दे दी है। आपको मजीद 45 करोड़ डॉलर की किस्त नहीं मिलने वाली है।
अच्छा,
आप अमीर होने वाले हैं।
बहुत शुक्रिया सर
जी। मौजूदा हुकूमत 23 जुलाई 2019 को 6 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो उसकी मंजूरी ली थी।
हाँ।
तो ये कर्जा जो है 6 अरब डॉलर का, ये 3 साल में किस्त वार अदा किया जाना था। तो अब तक पाकिस्तान जो है वो 2019 से 1 साल जुलाई से अब तक 1 अरब 44 करोड़ रुपए के कर्जे की 2 किस्तें जो है वो हासिल कर चुका है। अब ये तीसरी किस्त जो है ये पाकिस्तान को मिलने वाली है। तो ये आपको, आपके लिए तो मेरा ख्याल अच्छी खबर होगी या नहीं?
सर कर्जा तो चाहे जिस पे भी हो, चाहे इंडिविजुअल पे हो, चाहे मुल्क पे हो, कर्जा तो कर्जा है ना। फिर हमें किसी ना किसी तरह इसको वापस भी करना है ना। तो आप इसको अच्छी खबर ले लें या आप
इस तरीके से रियासत मदीना का जो तस्वूर है,
हाँ जी,
उस पर कोई अमली जमा कराया जा सकता है क्या? जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी
जी,
तो वो मदीना की रियासत जो है वो कर्जों पे चलती रही।
सही
हूँ?
सही कह रहे आप।
क्या कोई मुमकिन होता है ऐसे?
मगर जिस हालात में सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप उसको मदीना से कावा नहीं, हाशमी साहब आप उसको मदीना,
सारे हालात मैं कहता हूँ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैदा करता है।
नहीं, मैं एक बात बताऊँ ना आपको, अब इससे पहले कि आपने मदीना की रियासत से इसको कंपेयर किया, दैट्स नॉट अ वेरी गुड कंपैरिजन।
मैंने नहीं किया, मैं तो उस शख्स की बात करता हूँ जिसने हमें रियासत मदीना देनी थी।
हाँ, मगर आपने ये कहा कि ये जो है कर्जा जो है, क्या मदीना जो है, मदीना शरीफ उस जमाने में कर्जे से चला था? भाई मदीना शरीफ जो है उस जमाने में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया, उस वक्त जो है कोई ऐसा कर्जा उन पे था नहीं कि उनको भाई 6 अरब डॉलर देने हैं। अब अगर 6 अरब डॉलर देना है तो मुल्क तो चलेगा ही नहीं, मुल्क तो बैंक करप्ट था जब इमरान खान साहब ने उसको टेक ओवर किया है।
तो हुजूर पाक के पास खुद क्या था जब वो ये बुनियाद रखी उन्होंने और मदीना की रियासत चली, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने पास क्या था?
ठीक,
और आज के हुक्मरानों के अपने पास क्या है?
हुक्मरानों की बात करें ना, जो आज के हुक्मरान हैं उनके पास क्या है?
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना कि जिनके पास सब कुछ है और मुल्क को वो कर्जों से और सूद से चला रहे हैं, सूद पर पैसे लेके हुकूमतें चलाती रही हैं और मौजूदा हुकूमत भी चला रही है, क्या सूद पर कर्जे लेकर रियासत मदीना जो है उसकी तकमील की जा सकती है? उसके तस्वीर
आई एक्सेप्ट यू 100% सर, मैं आपके साथ हूँ 100%, नहीं होना चाहिए, मगर जो हालात है, हालात के तहत बाज दफा उनको ये करना पड़ रहा है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है।
नहीं, अगर हम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बदल दें और अपना सब कुछ बेच दें, और जब हुक्मरान और हुक्मरान के दोस्त और साथी और हुकूमत में शामिल लोग जो हैं जब उस पोजीशन में आ जाएं जिस माली हालत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिस तरीके से उन्होंने तर्ज जिंदगी उनका था, उस तर्ज जिंदगी पे आ जाए तो क्या हम बहुत सारे मसाइल से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते?
क्या ऐसा हो सकता है?
यही तो मैं कहता हूँ, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता तो फिर आप हमें ये ख्वाब क्यों दिखाते हैं? और आप ये जो
एक वक्त आएगा सर, एक वक्त आएगा, एक नहीं कावदी माशवी साहब, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एक वक्त ऐसा आएगा जब हम उस मकाम पे पहुंच जाएंगे कि अपने कदम पे आप देख लीजिए हमारे जितने भी पड़ोसी मालिक हैं वो भी इस सिचुएशन में अभी हैं कि वो दुनिया को कर्जा दे सकते हैं। तो हम भी इंशाल्लाह ताला अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हम भी एक वक्त आएगा, और बहुत जल्द आने वाला है वो, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी इस मकाम पे होंगे कि हम न सिर्फ ये कि सारे कर्जों से छुटकारा पा लें, मगर हम भी इस मकाम पे होंगे कि हमने भी तो अय्यूब खान के ज़माने में जर्मनी जैसे ममालिक को कर्जे दिए थे सर।
हम तो आज की बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान में तो जो कंपैरिजन होता है वो پیپل پارٹی کا، نون لیگ کا اور یہ موجودہ ہوتا ہے، وہ ایک دور تھا ایوب خان کا جو دور ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے آنے کے بعد وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، ایک خواب کی طرح ہے وہ، اس کی میں وکالت بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ اس پہ بحث کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ صرف کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ کیا حکمران، کوئی بھی حکمران، یہ حکمران موجودہ یا اس کے بعد کوئی آنے والا ہو، اور جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایوب خان کے زمانے کی طرح جو ہے وہ لوگ دوسروں کو قرضے دینے شروع کر دے گا،
صحیح،
تو یہ سود پر قرضے دینے شروع کرے گا؟
نہیں سر، وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم بھی اس قابل ہوں گے کہ دوسروں کو قرضہ دے سکتے ہیں. اب قرضہ کس بیس پہ دیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، وہ تو بات کی بات ہے.
آپ کے خیال میں، آپ کا یہ جو خواب ہے ماجد صاحب
جی،
جس خواب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس خواب کو تعبیر دی جا سکتی ہے اس وقت تک جبکہ حکمران جو خود ہوتے ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے وہ جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہو جائے؟
بدلنا پڑے گا سر، سب کو بدلنا پڑے گا، ناٹ اونلی حکمرانوں کو بلکہ باقی کے جتنے بھی، ایک ایک شہری کو، ایک ایک شہری کو. میں آپ کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف حکمرانوں کو بدلنا پڑے گا، پورے حکمرانوں کا، آف کورس یو آر 100% رائٹ کہ سارے حکمرانوں کو اپنا طرز عمل بدلنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ہر ایک شہری کو اتنے ذمہ داری سے کام کر کے اور اپنا جو فرض ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اس کو کرنا پڑے گا جب ہی قومیں بدلتی ہیں. سر
ہم تو اصل میں جو بات ہے ہمارے جو شہری کا ذکر آپ نے کیا
جی،
جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام جو ہے وہ حکمرانوں سے زیادہ کرپٹ ہے.
جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہر انسان کو، جو شخص ریگارڈلیس آف کلر، ریس اینڈ ریلیجن، اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو پاکستانی ایز اے پاکستانی آپ کو اپنا فرض پورا کرنا پڑے گا اور آپ کو بھی دیانتداری سے کام کرنا پڑے گا. جب سب مل کے کریں گے اور سب کا ایجنڈا ایک ہی ہوگا، اسی وقت کامیابی آ سکتی ہے.
تو آپ دیکھیے نا، اب یہ جو کرونا وائرس ہے اس طرف چلتے ہیں، اور بیچ میں یہ بھی بات ہوتی رہے گی کرونا وائرس کے حوالے سے بھی، یہ میں ایک دو مثالیں آپ کو دوں گا جو ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ اسلام آباد اور کراچی میں ڈیٹیکٹ ہوئے وائرس کے دو مریض، بلکہ وہ خود گئے ہاسپٹل میں اور اپنا چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ ان کو اثرات ہیں اس کے، کرونا وائرس کے. تو بہرحال یہ دونوں مریض جو ہیں یہ تو تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ کرونا وائرس کے دو مریض سامنے آنے کے بعد پاکستان کے میڈیا نے جو سنسنی خیز صحافت کی نا، وہ کمال کی چیز ہے. وہ ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک ایک ہے کہ پاکستان بھر میں، پاکستان میں کرونا وائرس پاکستان میں بھی پہنچ گیا، اور آٹھ آٹھ کال میں لیڈیں لگی ہوئی ہیں، پورے پورے اخبارات بھرے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے نیوز چینل جو ہیں وہ سوائے کرونا وائرس کے میرا خیال ہے ان کے پاس رہا ہی کوئی نہیں. انہوں نے بہت زیادہ اس کرونا وائرس کا خوف جو ہے وہ پھیلایا ہے پاکستان میں میڈیا نے. تو اس میں میڈیا نے تو میرے خیال میں یہ کوئی منفی کردار نہیں ادا کیا. اگر آپ کے علم میں آئے کہ ایسے کسی اور ملک میں، کیونکہ جتنی ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں چین میں، اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہاں پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. یہ دو بندے جو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے یہ خود گئے تھے، اور یہ دونوں جو ہے وہ زائرین تھے، تو وہاں سے ایران سے آئے تھے، اور ان کو چیک کیا گیا، بہرحال ان کو تسلی بخش قرار دیا گیا. اور جس طریقے سے یہ کیا گیا کہ کسی اور ملک میں بھی ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے، جن ملکوں میں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، میرے خیال میں ان ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوا جو اس ملک میں ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ عوام کے اندر خوف پیدا ہوا ہے، کسی ماں کا بچے کو زکام ہوا ہے वो उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर उसको 10 टेस्ट लिख के दे देता है, है जी। और मास्क की कीमत आपको पता है जो है वो 5 रुपए का मास्क जो है वो 500 रुपए में 250 रुपए में मास्क बिकने लग गए, मास्क गायब हो गए हैं, है जी, उसको वो जखीरा कर लिए गए हैं। तो ये सोसाइटी की इखलाकियात जो है ना वो भी बेनकाब हुई है यहाँ पर।
सर मैं आपसे यही तो कह रहा था खावर नहीं माशमी साहब के अब तब्दीली उस वक्त आएगी कि जब हुक्मरानों के साथ साथ एक एक शहरी, चाहे वो सहाफ़ी हो चाहे वो एक आम आदमी हो, उन तमाम लोगों को ये ज़खीरा अंदोजी वगैरह जो है ये सारी इसी में शामिल होती है ना कि भाई सबको बदलना पड़ेगा, सबको जो है दियानतदारी से काम करना पड़ेगा जब भी तब्दीली आएगी सर।
हाँ बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि यहाँ पर हुए हैं वो मिसाल के तौर पे वो मैं एक दुकानदार की बात कर रहा हूँ, कुछ दुकानदार गिरफ्तार भी किए गए हैं वो जो 5 रुपए वाला 150-150 रुपए में मास्क फरोख्त कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में महंगे जो मास्क बेच रहे हैं उनके खिलाफ दफा 144 भी नाफिज की गई है। लेकिन मास्क जो है लोगों ने जखीरा कर लिए हैं, ये देखिए आप है, पाकिस्तान एक अरसे से गैर मुल्की मास्क जो है वो नहीं मंगवा रहा था और यहाँ पर लोकल बन रहे थे मास्क और मजदूर तादाद में बन रहे थे और अब तो गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बनाए। लेकिन ऐसा
आरफा मुजफ्फर की जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कबूल कीजिएगा। खबर नहीं माशमी साहब, मेरा पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम 10 फरवरी को था और ये एक खौफ पैदा हुआ हुआ था और मुझे याद है 2 फरवरी को मेरे साथ ऑफिस में जितने लोग हैं हम कोशिश कर रहे थे कि हम मास्क जो हैं वो अपने जितने हमारे एसोसिएट्स हैं उनके लिए मास्क ऑर्डर कर लें और आप यकीन कीजिएगा कि अमेज़ॉन पे मास्क जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, शॉर्टेज थी। हमने जो मास्क ऑर्डर किए, मेरे पास रसीद पड़ी हुई है, वो हमें $44 का एक मास्क पड़ा था एंड इट वाज जस्ट एन आई थिंक आमिर आपके पास अगर पिक्चर है तो आप उस मास्क की पिक्चर लगा ही दें स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा है। वाज इट डू करेक्ट मी आमिर
तो यहाँ पर 5 रुपए में मिलता है
जी सर, मगर कहने की बात यह है कि जब लोगों की तवज्जो, हम हर चीज को डाउट से भी नहीं देख सकते क्योंकि मैंने कनाडा में रहते हुए हमने मास्क को ऑर्डर किया था बल्कि मेरी टीम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं आमिर, अगर बल्कि अगर आके ज़ाती तौर पे इस बात को शेयर कर लें, हम मास्क को ढूंढ रहे थे हमें नहीं मिले, 2 मास्क जब हमने मास्क हमें मिले ही मिले तो वो क्या था, सिंपल मास्क था, उसकी साइड के ऊपर वो फिल्टर्स लगे हुए थे, उसमें सांस लेना निस्बतन आसान था और एक एक मास्क हमें $40 का पड़ा था। आमिर क्या मास्क अवेलेबल थे जब मैं 2 फरवरी को हम पाकिस्तान जाने के लिए और मैंने आपसे कहा था कम अज़ कम 30 मास्क था कि हमने 6 दिन अगर रहना है तो 2-2 दिन अगर एक मास्क की उम्र है तो हर इंसान को मिल सके, हालांकि हम सारे मास्क के बगैर फिरे वहाँ पे। बताइए
आप ये बताना चाह रही है कि जिस तरह पाकिस्तान के दुकानदारों ने हाजी साहबान ने ये मास्क 5 रुपए का जो है वो 150 रुपए में बेचा है, इस तरह कनाडा में भी ऐसा ही हुआ।
सर मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, जरा आप जरा ये छोटी सी खबर को सुने क्योंकि हम ना गिला ज्यादा करते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते। कितने कितने का मास्क आपने ऑर्डर किया था?
अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले को, अस्सलाम वालेकुम आज भाई आप, अस्सलाम वालेकुम खावर साहब, बिल्कुल आरफा आप सही कह रही हैं, जब हम ये सर्च कर रहे थे मास्क अमेज़न के ऊपर तो वो जो एक तो शॉर्टेज थी मास्क की, बिल्कुल मास्क अवेलेबल नहीं थे, शॉर्ट हो गए थे और हमने हमें जो देखने में आया खावर नीम साहब जितने लोग सुन रहे हैं उन्होंने एक सिंपल से जो भी मास्क वो बेच रहे थे जो कीमतें ज्यादा उस पर डबल थी और एज कम्पेयर टू अदर मास्क, डिस्क्रिप्शन में जब मैंने जाके पढ़ा तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ डाली थी कि दिस मास्क इज बेटर इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन दिस डेज चाइना इंडिया पाकिस्तान और उन्होंने उसकी प्राइस जो है वो 2 गुना डबल करके उस पर डाली हुई थी।
और $44 का एक आम सा मास्क आप इमेजिन करें कि, और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे साथ 2-3 कमज़ोर लोग थे जैसे माजिद जमाल वगैरह, आई वॉज मोर कंसर्न फॉर हिम के ना हो, और वो इतने फजूल मास्क और 40 कितने का था, 40 का कि 39 का,
ऐसे $44
का एक मास्क, जस्ट वन मास्क, اور بگننگ میں میں نے ریکویسٹ عامر سے کیا تھا کہ عامر کم از کم میرا خیال تھا ڈھائی ڈھائی تین تین ڈالر کا ماسک ہوگا, عامر آپ ایسا کریں کہ 30 ماسک آرڈر کر لیں تاکہ تمام کے تمام پروڈیوسر جو جا رہے ہیں ان کو بھی ماسک ملیں گے, مگر ہم سارے کے سارے بغیر ماسک کے وہاں پہ پھرے. تو یہ جو پرائسز کا انکریز اینڈ شارٹیج ہے دس واز انٹرنیشنلی, ہر بات میں ہم پاکستان کو فوری طور پہ بلیم کر دیتے ہیں, حالانکہ ماسک کو آپ امیزون پہ جا کے آرڈر کریں جس میں امیزون پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, امیزون پہ آپ کو ماسک نہیں ملتا.
میری یہ سمجھ سے بالا تا رہا ہے کہ پاکستان میں جس کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں, جس غیر انسانی رویوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اگر کینیڈین عوام جو وہاں کے لوکل امیزون وغیرہ ہے ان کے اندر بھی ہے تو ہم پاکستان کو سلوٹ کرتے ہیں.
سر آپ میری بات پہ یقین ہی نہ کریں, آپ میری بات پہ یقین ہی نہ کریں, آپ اپنے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے.
جس ماسک کی آپ بات کر رہی ہوں گی اور جس ماسک کی میں بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے یہ دو ایک زمین آسمان کا.
خبر نہیں ہاشمی صاحب, میں قسمیاں بات کرتی ہوں, آپ ایسا کریں آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا, آپ گوگل کر کے دیکھیں, امیزون پہ آپ کو ماسک کی شارٹیج ملتی ہے, اور وہ ماسک جو میں سمجھتی ہوں ڈیڑھ دو ڈالر کا ہے وہ بھی آپ کو 20-25-30 ڈالر کا مل رہا ہے وہاں پہ, اور میں نے ذاتی طور پہ خریدے اور مجھے وہ حالانکہ ہم نے واپس کر دیے ہیں, ہم نے تو استعمال ہی نہیں کیے تھے, ہم نے تو واپس کر دیے ہیں کیونکہ مجھے کچھ ماسک جو ملے وہ ہم لوگ ہماری ٹیم پاکستان چلی گئی اور ہمارے جانے کے بعد وہ ڈلیوریز آئیں, وی جسٹ ریٹرن دوز. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ انسان ہیں جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. اس میں ہر بات پہ میں کہتی ہوں خاور نیم ہاشمی صاحب, میری بات شاید آپ کو بری لگے مگر میں اس بات کو اوپنلی کہتی ہوں کہ میں اور آپ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ نہیں کرتے. آپ امیجن کریں کہ انڈین کاؤنسلیٹ میں آپ چلے جائیں نا تو ٹیلی فون پہلے باہر رکھواتے ہیں پھر آپ کو اندر جانے دیتے ہیں, کتوں سے برا سلوک کرتے ہیں. پاکستان کا کاؤنسلیٹ میں آپ چلے جائیں ہم پھر بھی گلہ کرتے ہیں, مطلب جہاں پر قوانین کی پاسداری ہوتی ہے قوانین کی پاسداریوں کے لیے سختیاں ہوتی ہیں. یہ جو کلاسوں میں بچے بھی شتر بے مہار ہو گئے ہیں وہ ٹیلی فون لے کے اندر چلے جاتے ہیں, بچے شتر بے مہار ہیں, پڑھائی میں دھیان نہیں ٹیلی فون میں دھیان ہے. اور ظاہر ہے اگر آپ ایک آفیسر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ٹیلی فون کی بیل بج گئی, ہم تو مسجد میں جاتے ہیں تو صف پہ کھڑے ہو کے اپنے ٹیلی فون کی بیل کرنا بند کرنا بھول جاتے ہیں. غلطیاں میرے میں اور آپ میں ہیں مگر ہم ہر لحاظ سے پاکستان کو برا. میں بہت آپ کا تجربہ خاور نعیم ہاشمی صاحب اتنا ہے کہ میں اس سے سیکھتی ہوں, مگر میں انٹرنیشنلی اگر میں کسی چیز کو محسوس کرتی ہوں تو میں بے وجہ پاکستان کو ڈیفیم نہیں ہونے دوں.
پاکستان میں آج تک آپ جیسے مہذب ملکوں کا احترام اس لیے کرتے رہے کہ وہاں انسانیت ہے اور وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا, وہاں دھوکہ نہیں کیا جاتا, اور یہ بہت ساری چیزیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی تھی وہ چیزیں جو ہے وہ مغرب نے اپنائی ہوئی ہیں.
آپ صحیح کہتے ہیں
لوگ جی, لیکن آپ کی جو باتیں ہیں اسے ظاہر ہو رہا ہے.
خبر نیم ہاشمی صاحب, برائی دنیا کے ہر خطے میں ہے. میں اب اگین نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا چور بڑا طاقتور ہوتا ہے. کینیڈا میں رہتے ہوئے پاکستان میں جو غلط کام ہو رہے ہیں اور کینیڈا بیسڈ لوگ ہیں تو ڈو یو تھنک دیٹ از ایکسیپٹیبل؟ نو. مگر کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو جب ہم کچھ کہہ دیتے ہیں اس سسٹم کو ہم ابیوز کرتے ہیں یا اس سسٹم کو ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں, اس ملک کا دفاع کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے, اس لیے ہم اس سسٹم کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. پرابلمس میں تو بلکہ آج آپ سے میں تو انڈیا کے حوالے سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہوں. گلاب دیوی والا ہسپتال کیا تھا, ایک ہندو بنوا کے چلا گیا, آج تک مریضوں کا علاج ہو رہا ہے, مگر آج انڈیا میں توڑ پھوڑ کس نے مچائی ہوئی ہے, سیاست دانوں میں پیڈ بندوں کو ہائر کر کے بڑا غرق کیا ہوا, 36 بندے مر گئے ہیں وہاں پہ. تو کہنے کی بات ہے یہ پولیٹیشنز ہیں جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, عام آدمی بیچارہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. یہ جو پیسے والا آدمی ہے وہ پرابلم, چاہے وہ نارتھ امریکہ ہے چاہے وہ وہ کیا ہے جیفری ایپرسن کیا تھا, ایپسن جیفری امریکن تھا اور کیا کرتا تھا امریکہ میں, کیا لڑکیوں کی کمی ہے, لڑکیاں سپلائی کرتا تھا ان پولیٹیشنز کو امیروں کو, الٹیمیٹلی ہی اینڈیڈ اپ سوسائڈنگ ان امریکہ کی جیل کے بیچ میں, اور اگر اس کو نہ مر نہ معلوم کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے, آئی گارنٹی اس نے سوسائڈ نہیں کیا, اس کو مروایا گیا جیل کے بیچ میں, ان لوگوں نے مارا اس کو, کیونکہ اگر اس کا نام سامنے, اگر وہ زندہ رہتا اور اگر وہ کورٹ میں اپیئر ہو جاتا تو امریکہ کے پتہ نہیں کس کس پولیٹیشین کا نام آنا تھا. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو چارلز ہیں, پرنس چارلز ہیں, ان کے بھائی اینڈریو, ان کا بھی نام آیا کہ وہ ان کو بھی وہ لڑکیاں سپلائی کیا کرتا ہوتا تھا. تو یہ پرابلمز دنیا کے ہر خطے میں ہیں, برے لوگ دنیا کے ہر خطے میں ہیں. بہت شکریہ جی, اگلی خبر کی طرف لے کے چلیں.
پاکستان میں جو بڑی پرابلم آئی ہے اس کے ساتھ, کرونا کے ساتھ,
جی جان,
تو وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سعودی عرب نے جو پابندی لگا دی ہے
عمرے کی,
عارضی ویزا رکھنے والے اور عمرے پہ جانے والوں کو روک دیا گیا ہے. تو آج لاہور ایئرپورٹ میں 300 کے قریب زائرین جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ چکے تھے, بیٹھنے کے بعد ان کو آف لوڈ کیا گیا. اور اس طرح یہ مسائل جو ہے, بلوچستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 15 مارچ تک بند ہیں, سندھ میں بھی تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں, امتحانات جو ہے وہ ملتوی کیے گئے ہیں. تو بہت ساری حکومت جو ہے وہ اپنے پہ
جی خبر نہیں ہاشمی سر, مجھے لگتا ہے ایک دن خبر نہیں ہاشمی نے مجھے فائر کر دینا.
ہلو
یہ کچھ کہہ رہی تھی ایک دن قاور نعیم ہاشمی نے عارفا جی کو فائر کر دینا ہے.
اچھا نہیں میں نے کیوں فائر کرنا, اللہ معاف کرے,
انہوں نے اس لیے فائر کر دینا ہے مجھے کہ بھائی بی بی آپ پاکستان کو بہت ڈیفینڈ کرتی ہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا.
نہیں 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 میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جس کو ہم ڈیفینڈ کر سکیں. آپ ہی لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کر پاکستانی جو ہے مار رہتے ہیں, یا میں 80% لوگوں سے جب میں ملتا ہوں آپ جیسے مظلوم ملکوں میں جا کے, تو آپ پاکستانی جو ہے وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وی آر فرام پاکستان. آپ تو پاکستان کا نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی کا محسوس کرتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ یہ پاکستان واحد قوم ہے جن کو اپنی قومیت,
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں کو ماں کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں. خبر نہیں ہاشمی صاحب, میری اور آپ کے ماں باپ بڑے سمپل تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں کا تعارف کرانے سے ڈرتے ہیں, مگر جو جینون لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کی ماں خوبصورت, اور جب بڑھاپا تو ایسی چیز ہے کہ اچھے بھلے حسن کو نگل جاتا ہے, جو جینون لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو ہمیشہ, چاہے وہ خوبصورت ہے, چاہے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہے, چاہے وہ غریب ہے, وہ اپنی ماں کو ماں کہنے میں پرائیڈ لیا کرتے ہوتے ہیں. اور جو انسان اپنی ماں کی, میں تو بلکہ یہاں اکثر لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے اگینسٹ ہے تو آپ مت سمجھیے گا کہ وہ آپ کا ہوگا, وہ آپ کا بھی کبھی نہیں ہوگا, نیور.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آج 27 فروری تھا جی, پاکستان کی فوج نے یوم تشکر اور یوم عزم کے طور پر اس دن کو منایا ہے. یہ وہی دن ہے جب پچھلے سال جو ہے انڈیا کے 2 طیارے پاکستان میں مار گرائے تھے اور پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے, پر ان کا ایک ونگ کمانڈر جو ہے ابھینندن اس کو گرفتار کیا تھا. تو آج پاکستان کی فوج نے یہ جو 27 فروری 2019 کو یہ کامیابی حاصل کی تھی اس کو بڑے شان و شوکت سے بنایا ہے. اور یہاں پر ترجمان جو پاکستان کی فوج کے ہیں, نئے ترجمان بابر افتخار ہیں, یہ میجر جنرل ہیں, انہوں نے آج پہلی دفعہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پریس کے سامنے آئے ہیں. تو پاکستان کی فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر انڈیا میں جو حالات ہیں اس کو پیش نظر جو بات کی ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو نتائج جو ہے ان کو قابو کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا.
صحیح.
تو جو بھی انڈیا کی آپ بات کر رہی ہیں اور جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے, تو وہ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ تو یہی تصور کرتے ہیں کہ انڈیا کسی نہ کسی شکل میں پاکستان پر یا آزاد کشمیر پر حملہ آور ہونے کا تیاری میں مصروف ہے. اور جو اپنے ملک میں کہہ دیا ہے مسلمانوں کو کہ آپ پاکستان میں چلے جائیں, تو وہاں پر جو حالات ہیں خاص طور پہ نئی دلی میں جو حالات ہیں آج, جیسے ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ 38 یا 40 کے قریب تعداد ہو گئی ہے میرا خیال ہے,
جی
وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں, تو یہ صرف دو مہینے میں, پچھلے دو مہینے میں جنوری اور فروری میں 84 بار پاکستان کی سرحدی خلاف ورزیاں کی ہیں انڈیا نے. تو ان سارے حالات میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ الرٹ ہے اور خطرہ جو ہے وہ موجود ہے. میں نے پہلے بھی جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے کہا تھا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوگی, یہ رکے گا نہیں مسئلہ. پاکستان نے بہت صبر کیا ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان کی فوج نے کیا ہے, صبر حکومت نے کیا ہے, لیکن جو حالات پیدا کر رہا ہے انڈیا اس سے لگ رہا ہے کہ مسائل جو ہے. تو لاہور سے ایک بڑی خوبصورت میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خبر ہے کہ لاہور میں ایک سفاری پارک ہے, جیسے چڑیا گھر ہوتا ہے, جیسے آپ لوگوں کے پاس سفاری پارک ہوتا ہے,
شیر نکل آیا وہاں سے
اور شیر نے ایک 18 سالہ بچے کو کھا لیا.
آپ نے نہیں سنی یہ خبر؟
یہ 18 سال کا بچہ اس کو شیر کھا گیا. یہ جو بچہ ہے پتہ نہیں کیسے, سمجھ نہیں آ رہی, وہ کوئی 20 فٹ اونچا جنگلا ہے, اس کو پلان کر وہ ان کی کچھار میں گیا تھا, وہاں پر